ऐसा बहुत कम ही होता है कि दुनिया के दो मशहूर विश्वविद्यालयों की यूनियन के अध्यक्ष भारतीय उपमहाद्वीप से हों, वो भी एक साथ, और उनमें से एक भारतीय हो और दूसरा पाकिस्तानी। ऐसा विचित्र संयोग 1977 में हुआ था, जब बाद में मशहूर पत्रकार बने करण थापर कैम्ब्रिज यूनियन सोसाइटी के अध्यक्ष बने। उसी समय बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो भी ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय यूनियन में इसी पद के लिए चुनी गई थी। इन दोनों के बीच पहली मुलाकात इससे कुछ महीने पहले हुई थी, जब बेनजीर ऑक्सफर्ड यूनियन की कोषाध्यक्ष और करण कैम्ब्रिज यूनियन के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। बहुचर्चित किताब डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी लिखने वाले करण थापर बताते हैं,
इन्हें इनवाइट किया गया था, ये कैम्ब्रिज आई थी एंड शी वाज प्रपोजिंग द मोशन दिस हाउस वुड हैव सेक्स बिफोर मैरिज। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी में बैठा था, मेरे बगल में प्रेसिडेंट की बेल लमक रही थी। नाउ दैट बेड इज स्ट्रिक्टली फॉर द प्रेसिडेंट एंड नो वन एल्स, बट इग्नोरिंग दैट प्रोटोकॉल आई रीच्ड अक्रॉस एंड रैंग द बेल व्हेन शी वाज हाफवे थ्रू हर स्पीच एंड आई सेड आई सी मैडम।
इस विषय पर जब पहली बार बात हुई तो मैंने बैठक में ही बेनजीर की तफरी लेने के इरादे से कहा, मैडम जो आप कह रही हैं उसका क्या आप निजी जिंदगी में पालन करने की हिम्मत रखती हैं? ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों ने जोर का ठहाका लगाया और तालियां बजानी शुरू कर दी। बेनजीर ने तालियां रुकने का इंतजार किया, अपने चेहरे से चश्मा उतारा, अपनी नाक चढ़ाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, जरूर, लेकिन आपके साथ नहीं।
बेनजीर और करण के यूनियन के अध्यक्ष रहने के दौरान ईस्टर की छुट्टियों में करण के पास बेनजीर का फोन आया, क्या मैं अपनी दोस्त अलीसिया के साथ कुछ दिनों के लिए कैम्ब्रिज आ सकती हूँ? उस समय तक कैम्ब्रिज में हॉस्टल में रहने वाले अधिकांश छात्र अपने घर जा चुके थे। बेनजीर को ठहराने की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए करण ने हाँ कह दी।
One evening, Benazir and I think her name was Alicia, the lady she brought, decided to cook. तो इन्होंने कमाल का खाना बनाया और मेरे साथ दो तीन और भी मेरे दोस्त थे जो वहीं उसी बिल्डिंग में ठहरे हुए थे, तो इकट्ठा खाना खा के बेनजीर ने कहा रात के लगभग 10 या 10:30 बजे के करीब, चलिए लेट्स गो हैव एन आइसक्रीम। Now she had a lovely little MGB, a small little sports car, so we
हम लोग उनकी बहुत ही छोटी एमजी कार में किसी तरह समाए। हम समझे कि हम आइसक्रीम खाने कैम्ब्रिज जा रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील संभाले बेनजीर ने गाड़ी लंदन की तरफ मोड़ दी। वहां हम सब ने बॉस्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खाई। हम 10 बजे रात में चले थे और 1:30 बजे रात को कैम्ब्रिज लौटे। अगली सुबह ऑक्सफोर्ड लौटने से पहले उन्होंने मुझे 45 RPM का एक रिकॉर्ड भेंट किया, जिसमें एक गाना था, यू आर मोर देन अ नंबर इन माई लिटिल रेड बुक। वो हंसते हुए बोली, मुझे पता है कि तुम हर जगह इसका ढिंढोरा पीटोगे, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने दिल में सोचूंगी कि हो तो तुम एक दुष्ट भारती ही।
इस बीच करण पत्रकार बन गए। उन्होंने पहले द टाइम्स की नौकरी की और फिर वो LWT टेलीविजन में रिपोर्टर हो गए। कैम्ब्रिज जाने से कहीं पहले करण थापर की संजय गांधी से दोस्ती हुआ करती थी। वास्तव में संजय गांधी उनकी बड़ी बहन शोभा के दोस्त हुआ करते थे। वो शोभा से 6 साल छोटे थे, लेकिन तब भी वो उनसे मिलने अक्सर उनके घर आया करते थे।
उन दिनों में संजय सन कोलंबस स्कूल में होता था, वर्चुअली एवरी डे स्कूल के बाद ही वुड ड्रॉप इन, ही वुड सिट विद शोभा, प्ले कार्ड्स, जोक, लाफ, ड्रिंक टी और नींबू पानी। संजय बिकेम अ रेगुलर विजिटर टू शोभाज होम आफ्टर शोभा गॉट मैरिड, ही वुड ड्रॉप इन।
शोभा की शादी हो जाने के बाद भी उन्होंने हमारे घर आना जारी रखा था। मेरी माँ अक्सर उनसे दरवाजे के हैंडल या उनका ट्रांजिस्टर ठीक करने को कहती थी। संजय हमेशा जमीन पर बैठकर ये काम निपटाया करते थे। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम जहाज उड़ाना पसंद करोगे। मैं एक बार उनके साथ उनकी बगल में बैठकर जहाज पर गया था। थोड़ी देर में हम दिल्ली से दूर निकल आए थे। अचानक संजय ने तय किया कि खेतों में काम कर रहे किसानों को डराया जाए। उन्होंने जहाज को उनकी तरफ मोड़ दिया। जब हमारा जहाज किसानों की तरफ गया तो शुरुआत में तो उन्होंने हाथ हिलाकर अपनी खुशी जताई, लेकिन जब उन्हें लगा कि जहाज उनकी तरफ ही आ रहा है तो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आखिरी क्षण पर संजय ने विमान का रुख मोड़ा और वो फिर से ऊपर ले गए। संजय को इस तरह से किसानों को तंग करने में बहुत मजा आया। एक बात मैं जोर देकर कह सकता हूं कि संजय में और बहुत से दोष भले ही रहे हों, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी नहीं थी।
भारत वापस आने के बाद अमिताभ बच्चन के साथ किए गए इंटरव्यू से भी करण थापर का बहुत नाम हुआ।
We decided we would do a long interview to commemorate Amitabh's 50th birthday. तो बॉम्बे में हम थे उनके पुराने घर प्रतीक्षा में, और पहले टेप चेंज के मौके पे इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने एक इंटरव्यू देखा था काफ़ी महीने या काफ़ी साल पहले वॉरेन बेटी का, जिसमें इंटरव्यूअर वॉरेन बेटी साहब से पूछते हैं कि हम मैंने आपके बारे बहुत कहानियाँ सुनी है कि आपने काफ़ी औरतों के साथ रिश्ता रखा है, उनके बारे में मुझे बताइए। एंड आई सेड टू माय सेल्फ दिस इज एन अमेजिंग थिंग टू से टू समवन हू इज इंटरव्यूइंग यू। मुझे कहाँ इशारा दिया जा रहा है, क्या ये चाहते हैं कि इसी तरह की क्वेश्चनिंग मैं भी करूँ? तो जब टेप चेंज खत्म हुआ मैंने कहा कि देखिए आपने मुझे अभी ये कहानी बताई है तो लेट मी टेक अ लीफ आउट ऑफ योर बुक।
मैंने उनसे पूछ ही डाला कि शादी के बाद आपका किसी महिला से इश्क हुआ है? अमिताभ ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं। मैंने फिर पूछा, रेखा से भी नहीं? नहीं, उनसे भी नहीं। मैंने उनके बगल में बैठी हुई उनकी पत्नी जया भादुड़ी से भी पूछ लिया, क्या अमिताभ जो कह रहे हैं उस पर आपको कोई विश्वास है? जया ने जवाब दिया, मैं अपने पति पर हमेशा विश्वास करती हूँ। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अमिताभ बच्चन ने इसरार किया कि इंटरव्यू के बाद हम खाने के लिए रुकें। जब हम डाइनिंग रूम में खाने के लिए पहुंचे तो अमिताभ बच्चन का अब तक रुका हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फटा। इसकी शुरुआत तब हुई जब जया ने उनसे पूछा कि आप चावल लेना पसंद करेंगे? अमिताभ ने तमक कर जवाब दिया, तुम्हें पता है मैं चावल नहीं खाता। जया ने कहा, मैं चावल खाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रोटी आने में थोड़ी देर है। तब तक अमिताभ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो चिल्लाए, तुम्हें पता है मैं कभी चावल नहीं खाता। अब हमारी बात समझ में आने लगी थी कि मेरे सवालों से उपजे गुस्से को अमिताभ ने जिस तरह रोक रखा था वो अब बाहर आ रहा था। हमारे लिए ये थोड़ी परेशानी की बात थी क्योंकि हम उनकी ही खाने की मेज पर बैठकर उनका दिया खाना खा रहे थे। हम 15 मिनट तक वहां रहे। इस बीच खाने की मेज पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अगले दिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझसे चैनल की मालकिन शोभना भारतीय ने कहा कि मैं अपने इंटरव्यू से अमिताभ के इश्क वाला सवाल हटा दूं। मैंने वो हिस्सा हटा भी दिया लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। मैंने अपने एक पत्रकार मित्र आनंद सहाय से संपर्क किया जो उस समय पायनियर अखबार में काम करते थे। उन्होंने ये खबर पूरे 8 कॉलम में अपने अखबार में छापी। उन्होंने इस खबर में मेरा नाम नहीं लिया लेकिन इसका स्रोत में ही था।
सन 2000 के शुरुआती दिनों में अशरफ जहांगीर काजी भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बनाए गए। वो समय भारत के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ अपने संबंध बनाना चाहते थे। करण थापर याद करते हैं।
उन दिनों में अशरफ नए आए हुए थे हिंदुस्तान, वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे और वो चाहते थे कि an attempt should be made by him to try and improve the relationship.
मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं अशरफ को अपनी कार में बैठा कर आडवाणी के पंडारा पार्क वाले घर पर ले जाऊं। मैं रात के 10 बजे उन्हें लेकर वहां गया। ये गुप्त मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इसके बाद अगले 18 महीनों में आडवाणी और अशरफ करीब 20 या 30 बार इस तरह मिले। मई 2001 में भारत ने घोषणा की कि उसने जनरल मुशर्रफ को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। एक दिन सुबह 6:30 बजे मेरा फोन बजा। आडवाणी लाइन पर थे। उन्होंने कहा, आपने मुशर्रफ वाली खबर तो सुन ली होगी, आप हम दोनों के दोस्त को बताइए कि इसका बहुत कुछ श्रेय हम दोनों की मुलाकातों को जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि जब मई 2002 में जम्मू के पास कालचूक हत्याकांड हुआ तो भारत सरकार ने इन्हीं काजी अशरफ जहांगीर को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला किया।
When Ashraf was given a week's notice to leave the country, Mrs. Advani rang and said that she was very keen that Ashraf and Abida should come for a cup of tea so that the two families could.
Ashraf ke Pakistan wapas jaane se ek din pehle Advani ki patni Kamla ka mere paas phone aaya ki kya aap Ashraf sahab aur unki patni Abida ko mere yahan chai ke liye la sakte hain. Meri samajh mein nahi aaya ki ek taraf Bharat sarkar is shakhs ko apne desh se nikal rahi hai aur dusri taraf uska up pradhanmantri usi shakhs ko apne yahan chai par bula raha hai. बहरहाल मैं उनको लेकर आडवाणी के यहाँ पहुँच गया। हम लोगों ने आडवाणी की स्टडी में चाय पी। विदा लेते समय जब अशरफ आडवाणी की तरफ हाथ मिलाने बढ़े तभी कमला ने कहा, गले लगो। दोनों व्यक्ति ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक साथ उनकी तरफ देखा। कमला आडवाणी ने फिर कहा, गले लगो। आडवाणी और अशरफ ने एक दूसरे को गले लगाया। मैं आडवाणी के पीछे खड़ा था। मैंने देखा कि आडवाणी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अवचालन के कुछ हफ्तों बाद जनरल परवेज मुशर्रफ करण थापर को इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। ये इंटरव्यू चूंकि दूरदर्शन के लिए किया जाना था इसलिए करण थापर से कहा गया कि वो बहुत ही आक्रामक इंटरव्यू लें।
ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था फरवरी के शुरुआत में 2000 में। 5 or 6 weeks after the Kandahar hijack and roughly 4 months after General Musharraf took over power, ousting Nawaz Sharif. I was therefore interviewing on behalf of Doordarshan, a Pakistani military dictator.
इंटरव्यू शुरू होते ही मैंने मुशर्रफ पर हमला बोल दिया। मुशर्रफ भी उतने ही आक्रामक थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान मैंने माहौल को थोड़ा हल्का बनाने के उद्देश्य से जनरल मुशर्रफ से कहा, जनरल साहब आपने बहुत अच्छी टाई पहन रखी है। मुशर्रफ को यह तारीफ बहुत अच्छी लगी। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, उन्होंने अपनी टाई उतारी और मेरे हाथ में रख दी। मैं विरोध करता ही रह गया कि मेरा ये उद्देश्य नहीं था। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और कहा कि ये टाई अब से तुम्हारी हुई। मैंने भी मजाक किया कि मुझे पता होता कि आप हर वो चीज़ दे देते हैं जिसकी तारीफ होती है, तो मैं आपसे इस टाई में लगी हुई सोने की टाइपिन की तारीफ करता। मुशर्रफ ने ठहाका लगाया और कहा, हाँ अगर आपको मेरे जूते भी पसंद आते तो वो भी आपको मिल जाते।
करण थापर का इसी तरह का एक मुश्किल इंटरव्यू जयललिता से भी हुआ था। कई दिनों की मशक्कत के बाद मिले इंटरव्यू में पूछे गए सवालों से जयललिता बहुत नाराज हो गई थी। करण को ये इंटरव्यू अभी तक याद है।
It was a very tense interview from the word go. I was asking questions that she clearly did not want to have asked and I was pressing them in a way that I think she found uncomfortable.
जयललिता का कमरा इतना ठंडा था कि मेरे दांत किटकिटा रहे थे। इंटरव्यू बिगड़ना तब शुरू हुआ जब जयललिता के सामने फूलों का एक गमला रख दिया गया। मुझे ये पता नहीं था कि फूल वहाँ इसलिए रखे गए थे ताकि उनकी आड़ में जयललिता कुछ कागजों को पढ़कर जवाब दे सकें। मेरी ये गलती थी कि मैंने ये चीज़ उन्हें बता दी। उन्होंने उखड़ कर कहा, मैं आपकी आंखों में सीधे देख रही हूँ। एक समय ऐसा भी आया जब जयललिता ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं इस इंटरव्यू के लिए तैयार ही क्यों हुई। इंटरव्यू खत्म होने पर मैंने उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, चीफ मिनिस्टर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जयललिता ने मेरी तरफ घूर कर जवाब दिया, आपसे बात करके मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, नमस्ते। उन्होंने माइक निकाल कर मेज पर पटका और कमरे से बाहर चली गई।
चीफ मिनिस्टर, a pleasure talking to you on Hard Talking.
I must say it wasn't a pleasure talking to you. Namaste.
वर्ष 2007 में नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, करण थापर का इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए थे। करण ने इंटरव्यू की शुरुआत में ही उनसे पूछ लिया, राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य कहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग आपके मुंह पर आपको सामूहिक हत्यारा कहते हैं और ये भी कहते हैं कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं।
असल में उन्होंने कूल तो कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि वो कभी नाराज नहीं हुए, लेकिन उनकी पेशेंस बड़ी जल्दी मिट गई। लगभग 3 मिनट का इंटरव्यू था बिफोर ही वॉक्ड आउट। इफ आई रिकॉल करेक्टली, माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज टू से टू हिम, यू आर 6 वीक्स अवे फ्रॉम योर सेकंड इलेक्शन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात।
अगर मुझे ठीक से याद है तो मेरा पहला सवाल था, आप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे चुनाव से 6 हफ्ते दूर खड़े हैं। इंडिया टुडे और राजीव गांधी फाउंडेशन ने आपको सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बताया है और दूसरी तरफ हजारों मुसलमान आपको हत्यारे की तरह देखते हैं। क्या आपके सामने इमेज की समस्या है? उन्होंने कहा कि ऐसे कम ही लोग हैं जो ये सोचते हैं। मैंने कहा कि ऐसा मानने वाले कम नहीं हैं। तब उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो खुश रहें, और अगर आपकी ये सोच है तो आपको मुबारक। और फिर वो कहने लगे, मुझे पानी चाहिए। तो मैंने कहा कि पानी तो आपकी बगल में रखा है, ये लीजिए। तब मुझे एहसास हुआ कि पानी तो बहाना है और वो इंटरव्यू ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने माइक उतार दिया और इंटरव्यू ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारी करीब 1 घंटे की बातचीत हुई और मैं इंटरव्यू दोबारा शुरू करने के लिए उन्हें मनाता रहा, पर उनकी मेज़बानी काफ़ी अच्छी थी। वो मुझे चाय, मिठाई और ढोकले की पेशकश करते रहे, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए कतई राजी नहीं हुए।
Let them do and let them enjoy.
Can I suggest something to you?
I have no problem.
Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that what? Maybe the government should have done more to protect the Muslims?
What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements.
Just say it again.
Not necessary. I have to talk about the interview and seven everything. What you want to talk?
But by not saying it again. By not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it.
Oh, I'll have to rest. Purple water. Yeah.
For pani aap
pichhe rahe. Dosti bani rahe. Apni dosti bani rahe. You came here. Happy. I'm thankful to you.
शाम को नरेंद्र मोदी ने करण थापर को फोन कर कहा, करण भाई, जब मैं दिल्ली आऊंगा तो भोजन करेंगे साथ। लेकिन इसके बाद नरेंद्र मोदी ने कभी करण की शक्ल नहीं देखी। और तो और, 2017 के बाद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।